श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु भजन गा सकोगे सब? श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे,
करताल है और
तोमा बिना के दयालो जगता संसारे, तोमा बिना के दयालो जगता संसारे, पतित पावन हे तो तव अवतारा, पतित पावन हे तो तव अवतारा, भो समपतिता प्रभु नापै बयाना, भो समय पतिता प्रभु नापै बयाना, हा हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, धाम आहा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, कृपा करो काना करे आमे बड़ा दुखे, कृपा करो काना करे आमे बड़ा दुखे, दया करो सीता पाति अद्वैत गसाई, दया करो सीता पाति अद्वैत गसाई, कृपा बाले पाए चैतन्या निताए, तावा कृपा बाले पाए
तेथ ज्ञान काय हा स्वरूप नाथन रूपा रघुनाथ हा स्वरूप नाथन रूपा रघुनाथ भाषा योगा जुवा प्रभो लोकनाथ भाषा योगा जुवा प्रभो लोकनाथ दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास रामचंद्र संग मागे धरा समदास रामचंद्र संग मागे धरा समदास हरि 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 हरि
जय ओम श्री पाद परमहंस पवित्र गुरु ड्राइंग अमित भक्ति दानंद स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की श्री श्री गौड़ताय की ऑल ग्लोरी श्री समुद वोडीज ऑल ग्लोरी श्री समुद वोडीज ऑल ग्लोरी श्री समुद वोडीज ऑल ग्लोरी श्री गुरु श्री गंगा ओम ज्ञातिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाख्य चक्षुरन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोविश्वं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मयां ददाति स्वापदधिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश श्रीरूपां सग्राजतं सहागना रघुनाथन्वितं तं सजैवं सद्वैतं सवद्भूतं साहित्यं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहागना ललिता श्रीविशाखान्वितं सं हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पदे गोपेशा गोपिका कन्तक नानखन्त नमोऽस्तुते तप्त कञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी कृषभानुसुतिदेवी प्रणमामि हरिते ज्वञ्च कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो जय श्री कृष्ण Hare Krishna. Hare Krishna. तभी आप भक्तों ने श्रील प्रभुपाद जी का लेक्चर सुना. ये लेक्चर था भागवतम के प्रथम स्कंध के दूसरे अध्याय का 18वां श्लोक. ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है और हर भक्त को इस श्लोक को लगभग कंठस्थ करना चाहिए. कौन सा श्लोक था, किसे याद है? नास्ता प्रेषु अभद्रेषु नित्यम भगवत सेवया भागवती. ये लेक्चर प्रभुपाद जी ने दिया था अगस्त 21 को 1972 लॉस एंजलिस में. तो प्रभुपाद सबसे पहले समझा रहे हैं भगवत सेवा का अर्थ, क्योंकि इस श्लोक का अनुवाद है कि जो व्यक्ति बकायदा भागवतम को सुने और भक्त भागवत की सेवा करे तो उसके हृदय में जो माया का प्रभाव है, जो भौतिक आकर्षण है, वो समाप्त हो जाएगा और उसके हृदय में भक्ति भावना स्थापित होगी. हम सबके हृदय में क्या है? मैल है, जिसे हम अनर्थस के नाम से जानते हैं. और इन अनर्थस के प्रभाव के कारण हम भक्ति के प्रति आकर्षित नहीं होते. प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे, जैसे कि अगर आपको कैटरक्ट की बीमारी है तो आंखों से आप ठीक देख नहीं सकते, या अगर आपको जॉइंडिस हो तो आपको मीठा गन्ने का रस भी दिया जाए तो आपको इसका टेस्ट नहीं आएगा. इसी श्लोक के समान एक और श्लोक हमें प्राप्त होता है श्री उपदेशामृत में. श्री उपदेशामृत में केवल 11 श्लोक हैं जिनकी रचना रूप गोस्वामी जी ने की है, पर हर श्लोक का इतना गहरा अर्थ है कि अगर हम ये 11 श्लोकों के संदेश का पालन करें तो अवश्य ही भक्ति के मार्ग में सफलता प्राप्त कर सकोगे. तो इस उपदेशामृत के 7वें श्लोक में रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान के जो नाम हैं, भगवान की जो लीला है, भगवान की जो कथा है, ये चीनी जैसे या मिश्री जैसे मीठी है, पर हम इसका मीठापन महसूस नहीं कर पा रहे. जैसे जाप के समय आपको नींद आ जाती है, भागवतम के समय आपको नींद आ जाती है. तो रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हालांकि भगवान के नाम मीठे हैं, भगवान की लीलाएं, भगवान की कथा मीठी है, पर हमें इसका मीठापन महसूस नहीं हो रहा. और इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि हमारे जीव में अविद्या की बीमारी है. और यह अविद्या की बीमारी दूर कैसे होगी? वो कहते हैं अगर आप सावधानी से हरि नाम का जाप करोगे तो इसके द्वारा यह अविद्या की बीमारी जो है दूर होगी. तो यही संदेश इस भागवतम के श्लोक में दिया जा रहा है. यहां इस श्लोक में बल दिया जा रहा है 2 महत्वपूर्ण विषयों पर. पहला विषय यह है कि हमें सावधानी से भागवत सुनना चाहिए. रूप गोस्वामी जी जब कहते हैं कि अविद्या की बीमारी दूर करने का इलाज क्या है, नियमित रूप से बकायदा हरि नाम का जाप करना, वो साथ में ये कह रहे हैं कि हरि नाम का जाप बिल्कुल सावधानी के साथ होना चाहिए. केवल जप ही नहीं, पर बड़े ध्यान पूर्वक होकर, क्योंकि भगवान के नामों में और भगवान में कोई अंतर नहीं. नामा चिंतामणि कृष्ण चेतन रास विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्तो भिन्नात्वम नाम नामिना. कहा गया है कि भगवान के नाम जो हैं भगवान से जुदा नहीं है और ये चिंतामणि परस पत्थर के समान है. तो रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं क्योंकि भगवान के नाम भगवान से अभिन्न है तो अगर हम सावधानी से ये नामों का जाप करेंगे तो जो भौतिक आकर्षण है, जो माया का प्रभाव है, जो अनेक प्रकार के भौतिक विचार हैं, ये क्या होंगे? ये नष्ट होंगे। तो इस भागवतम के श्लोक में भी यही विचार प्रकट किया जा रहा है। तो भागवत के श्लोक में कहा जा रहा है, सावधानी से क्या करो? भागवतम को सुनो। और साथ में ये कहा गया है, बकायदा नियमित रूप से। इसीलिए इसका उनके हर केंद्र में सुबह के समय भागवत का क्लास होता है। चैतन्य महाप्रभु जी भी जब दक्षिण भारत गए थे तो वहां एक समय खुरमा ब्राह्मण के घर में गए थे रहने के लिए। जब चैतन्य महाप्रभु जी अपनी यात्रा करते थे तो अलग अलग गृहस्थ भक्तों के घर में रहते थे। तो खुरमा ब्राह्मण ने ये इच्छा प्रकट की थी कि मैं घर छोड़कर आपके साथ जाना चाहता हूं, पर महाप्रभु जी ने कहा कि मेरे साथ आने की आवश्यकता नहीं। अगर तुम घर में रहकर हरि नाम का जाप करोगे, बकायदा भागवत को रोज पढ़ोगे, तो तुम मेरे साथ ही रहोगे। तो यहां कहा जा रहा है भाई, रेगुलरली हियरिंग दी भागवतम। इसलिए अगर हम भक्ति के भाग में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये बहुत आवश्यक है कि हम रोज भागवतम क्लास में आए और आने के साथ ध्यान से सुने। ये नहीं कि हम 6 घंटे रात को सोते हैं और आधा घंटा क्लास के उस समय। ध्यान से सुनोगे एक तो फिर इसका आपको लाभ पहुंचेगा। प्रभुपाद जी से एक दो दफा भक्तों ने पूछा कि आप इतने उत्साहित होकर कैसे प्रचार करते हो, तो प्रभुपाद जी ने कहा, ये कहता है, हर्ड वेरी अटेंटिवली। प्रभुपाद जी कहते थे कि क्योंकि मैं बहुत सावधानी से सुनता था जब गुरु जी का उपदेश वो देते थे। तो यहां कहा जा रहा है कि सुनो भी बकायदा और सावधानी के साथ। और अगर आप भागवतम को ध्यान से सुनोगे, अगर आपको पूरा संदेश समझ नहीं भी आएगा तो भी उसका असर पड़ेगा। और क्या असर होगा? कि जो भौतिक आकर्षण है घटते जाएगा। तो भागवतम को ध्यान से सुनो और साथ में हरि नाम का जाप करो ध्यान से। और ध्यान पूर्वक होकर जाप करोगे, ध्यान पूर्वक होकर भागवत का संदेश सुनोगे, तो व्यासदेव जी के अनुसार, रूप गोस्वामी जी के अनुसार, इसके द्वारा जो अनर्थ है, अनर्थ का अर्थ है जिन कार्यों की आवश्यकता नहीं है, जैसे कि जो भक्ति कृष्ण भक्ति में जुड़ते हैं वो 4 नियमों का पालन करते हैं। जब आप किसी भौतिक व्यक्ति को कहो कि हम इन नियमों का पालन करते हैं तो वो कहेंगे, अरे जीने का क्या फायदा, इन चीजों के बिना तुम कैसे जी सकते हो। पर आप जिन्होंने जो कि निश्चित रूप से प्रयास कर रहे हैं इन नियमों का पालन करने के लिए, उनका क्या अभ्यास है कि आप बड़ी सरलता के साथ इनके बिना जी सकते हो। मांस शराब अगर इनके बगैर जीना कोई कठिन काम नहीं है। तो इसी प्रकार भौतिकवादी सोचते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य के बिना हम कैसे जिएंगे। पर जो व्यक्ति भक्ति के मार्ग में जुड़ते हैं उनका क्या अभ्यास है कि भक्ति की शक्ति से आप इन अनर्थस को कमजोर बना सकते हो और अंत में नष्ट कर सकते हो। ये स्पष्ट कहा गया शास्त्रों में कि केवल भक्ति एक साधन है जिसके द्वारा आप अनर्थ का प्रभाव जो है घटा सकते हो। तो आज के श्लोक में कहा जा रहा है कि बकायदा भागवतम को सुनो और जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनकी सेवा भी करो। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु जी ने रूप गोस्वामी जी को उपदेश देते हुए कहा कि अगर हम आध्यात्मिक मार्ग में परिवर्तन करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें गुरु की शरण लेनी चाहिए, पहला कदम। फिर आगे वो कहते हैं सेवा करो, फिर आगे कहते हैं दीक्षा लो, फिर आगे कहते हैं श्रद्धा और प्रेम से सेवा करो, और फिर पूछो क्या हमें त्यागना चाहिए भगवान के शरणागत होने के लिए। तो इस विषय पर, इस विषय का वर्णन कई स्थानों में है कि हमें संतों की सेवा करनी चाहिए, शुद्ध भक्त की सेवा करनी चाहिए। नारद मुनि जी से पूछा गया था उनके विषय में कि आपने इतना ऊंचा स्थान कैसे प्राप्त किया, तो नारद मुनि ने कथा सुनाई जिसके विषय में आप भागवतम के प्रथम स्कंध में पढ़ते हो, किस प्रकार पूर्व जन्म में उनकी माता संतों के घर में सेवा कर रही थी, उन्हें भी संतों की संगत का लाभ उठाने का मौका मिला। तो प्रभुपाद जी के लेक्चर में प्रभुपाद जी इस विषय पर पहले बल देते हैं किस प्रकार हमें भक्तों की सेवा करनी चाहिए, और इस विषय में प्रभुपाद जी शिव जी और पार्वती का वर्णन करते हैं, और प्रभुपाद जी उस श्लोक का वर्णन कर रहे हैं इस तात्पर्य में प्रवचन में, जहां कहा गया कि विष्णु की सेवा सब देवताओं की सेवा से सबसे ज्यादा बेहतर है, पुरुष से भी ज्यादा बेहतर है क्या, भगवान के भक्तों की सेवा। कई बार हम भक्तों के मन में यह भाव रहता है हम केवल भगवान की सेवा करेंगे बस, और किसी की सेवा नहीं, पर हमारे शास्त्रों में वैष्णव सेवा पर भी बल दिया गया है, और यहां ये कहा जा रहा है शुद्ध भक्तों की आम सेवा करो। उपदेशमृत में रूपा गोस्वामी जी कहते हैं कि हमें मन से आदर देना चाहिए किसी को भी जो हरि नाम कर रहा है, कोई हरि नाम कर रहा है, कई बार लोग हरि नाम करते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, हरि नाम ले रहे हैं और एक दो नियमों का पालन कर रहे हैं। आप सबको इज्जत दो, जो भी व्यक्ति हरि नाम की महिमा को स्वीकार करता है उसको आप इज्जत दो, पर सेवा कर रहो और संगत कर रहो किसकी, जो कि भगवान की सेवा में शुद्ध भावना से जुड़ा है उसके चरणों में सेवा करो। यह है रूप गोस्वामी जी का वर्णन। तो इज्जत दो सबको जो हरि नाम कर रहा है, चाहे वो एक नियम का पालन कर रहा है, दो नियम का कर रहा है, तीन का कर रहा है, चार का कर रहा है, पर सेवा करो उस वक्त की जिसके मन में कोई कपट नहीं, पर सेवा भाव। यह है रूपा गोस्वामी जी का उपदेश श्री उपदेशमृत में। तो यहां प्रभुपाद जी भी कह रहे हैं कि विष्णु की सेवा सब देवताओं की सेवा से ज्यादा बेहतर है, और ये उपदेश शिव जी ने दिया पार्वती को। ऐसे आप भागवतम के दसवें स्कंद को पढ़ो तो आप देखोगे कि दसवें स्कंद में जो अनेक प्रसिद्ध देवता देवियां हैं वो भी परम भगवान का ही गुणगान कर रहे हैं, इंद्र ब्रह्मा शिवा। तो शिव जी भी कहते हैं सब प्रकार की सेवा में सबसे बेहतर है क्या, विष्णु की सेवा, और उसे भी ज्यादा बेहतर है क्या, उनके भक्तों की सेवा। जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनके मन में केवल एक ही भाव है कि हर व्यक्ति को कृष्ण की सेवा के साथ जोड़ा जाए, ये नहीं कि अगर शास्त्र में कहा गया है कि भगवान विष्णु की सेवा से ज्यादा बेहतर उनके भक्तों की सेवा, तो भक्त कहेगा अब केवल मेरी सेवा करो और भगवान की जगह अपनी मूर्ति लगाएगा। नहीं, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो केवल हर भक्त को, हर व्यक्ति को कृष्ण के साथ जोड़ना चाहते हैं। जैसे अगर आप प्रभुपाद जी का जीवन देखो, उनका एक ही भाव था हर व्यक्ति को कृष्ण सेवा में जोड़ने के लिए। तो भगवान के भक्त अगर सेवा ले भी तो सेवा का भाव क्या होता है, कृष्ण के साथ हर व्यक्ति को जोड़ने के लिए। तो इस विषय का वर्णन प्रभुपाद जी कर रहे हैं, और प्रभुपाद जी ने जैसे मैंने कहा तो शिव जी के श्लोक का उपयोग किया जिसमें वो कह रहे हैं विष्णु की सेवा उससे भी ज्यादा बेहतर है क्या, उनके भक्तों की सेवा। तो आगे प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये जो माया का प्रभाव है अबद्रानी, अबद्रानी का अर्थ है अनर्थस का प्रभाव, हाँ ये कैसे नष्ट होएगा, ये नष्ट होगा ये भागवत के संदेश को सुनकर। और आगे प्रभुपाद जी तीन गुणों का वर्णन करते हैं, सतगुण, राजोगुण और तमगुण। और प्रभुपाद जी ने कई बार ये उदाहरण दिया था कि जिस प्रकार तीन बेसिक कलर्स हैं, रेड येलो एंड ब्लू, लाल पीला नीला, तो जितने आप रंग देखते हो ये सब बनते हैं कैसे, इन तीन रंगों को मिक्स करके। तो उसी प्रकार तीन गुण हैं, सतगुण, राजोगुण, तमगुण, इनका वर्णन भागवत गीता के 14वें अध्याय में किया गया है। तो भगवान समझाते हैं भागवत गीता में कि सतगुण का लक्षण क्या है। सतगुण के लक्षण की स्थिति में एक व्यक्ति संतुष्ट रहता है ये विचार से कि मेरे पास आध्यात्मिक ज्ञान है, मैं ठीक काम कर रहा हूं, पर ये शुद्ध भक्ति का भाव नहीं रहता। आगे फिर है रजोगुण। रजोगुण के प्रभाव में व्यक्ति बहुत मेहनत करता है, उसके अनेक भौतिक इच्छाएं रहती हैं और उसके मन में यह भाव रहता है कि जो मेरे परिश्रम का नतीजा है उसका लाभ मुझे ही आना चाहिए। अगर मैं पैसे कमा रहा हूं तो ये पैसे मैं कमा रहा हूं मेरी मेहनत के कारण, तो इसलिए मुझे खर्चना चाहिए 10 करोड़ शादी में, 2 करोड़ रेस्टोरेंट से घूमने फिरने में। एक सेठी, एक धनी व्यक्ति है भारत में जिसके पास 132 गाड़ियां हैं तो 7 मंजिल की बिल्डिंग बना रहे हैं सब गाड़ियों की पार्किंग के लिए तो मेहनत करता है, कमाता है, पर उसका पैसा लाभ वो खुद उठाना चाहता है। और राजोगुण के प्रभाव में व्यक्ति की जो भौतिक इच्छाएं हैं वो केवल बढ़ते ही जाती हैं। फिर है तमगुण का प्रभाव। तमगुण के प्रभाव में व्यक्ति आलसी रहता है। राजोगुण में कम से कम मेहनत तो करता है, पर तमगुण के प्रभाव में आलसी रहना, आध्यात्मिकता में कोई रुचि नहीं रहना। तो भगवान कहते हैं सतगुण राजगुण से ज्यादा बेहतर है। और सतगुण का एक लक्षण यह है कि जो 9 द्वार हैं हमारे शरीर में, उन सब में थोड़ा दिव्य ज्ञान है। पर आगे भगवान ये भी कहते हैं भगवद गीता में कि जब तक व्यक्ति ये 3 गुणों के प्रभाव में रहेगा जब तक क्या अनुभव होगा, कभी कभी सतगुण की विजय और दूसरे 2 गुणों की हार, कभी कभी रजोगुण की विजय और सतगुण और तमगुण की हार। तो इसलिए भगवान आगे जाकर कहते हैं कि हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम सतगुण के प्रभाव के भी पार जाएं। और उसे क्या कहा जाता है, शुद्ध सत्वा, मतलब कि हम शुद्ध भक्ति के भाव में आए। और जब आप शुद्ध भक्ति के भाव में आओगे तो जब उस स्थिति में आपके हृदय में एक ही विचार रहेगा किस प्रकार आप भगवान की सेवा कर सकते हो। और जैसे कहा गया है कृष्ण भक्त निष्कामा अत एव शंता, जो व्यक्ति निष्काम भाव से भगवान की सेवा में जुड़ता है उसका मन हमेशा शांत रहेगा। और अगर हम साकाम भाव से जुड़ते हैं, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, तो फिर सकाली अशंता। अगर आप साकाम भाव से जुड़ते हो, कई बार हम देखते हैं कि इस्कॉन में भी लोग जुड़ते हैं अनेक प्रकार की भौतिक इच्छाओं के साथ, तो जब उन्हें कोई सुविधा प्राप्त हो तो वो संतुष्ट रहते हैं, और जब वो सुविधा प्राप्त नहीं हो मन की तो हम अशांत हो जाते हैं। पर इसलिए कृष्णदास कविराज ने यह कहा है कि अगर आप सदा शांत रहना चाहते हो तो निष्काम भाव से हमें भगवान की सेवा में जुड़ना चाहिए। और अगर भौतिक इच्छाओं के साथ या किसी प्रकार की इच्छा के साथ जुड़ोगे तो आपका मन सदा अशांत रहेगा। तो प्रभुपाद जी ये 3 गुणों का वर्णन करते हैं और समझाते हैं कि हमें हृदय की मैल को हृदय से निकालना है, उसका क्या है, नस्त प्रेषो बद्रेषु, हमें बड़े सावधानी से भगवान के नामों को सुनना है, बहुत सावधानी से भगवान के संदेश को सुनना है। भगवत में क्या है, भगवत में भगवान का उपदेश है, और अनेक लीलाएं हैं, साथ में भागवत में अनेक कथाएं हैं, पर इन सब कथाओं का मूल भाव क्या है कि हमें परम भगवान के शरणागत होना चाहिए। जैसे आप एक कथा पढ़ते हो भागवत में महाराज ययाति की, ये महाराज ययाति की का आकर्षण था इंद्रिय तृप्ति के प्रति, तो महाराज ययाति को 10,000 सालों के लिए इतनी सुविधा प्राप्त हुई कि आज भौतिक जगत में कोई उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। 10,000 सालों के लिए उन्हें हर प्रकार की इंद्रिय तृप्ति की सुविधा प्राप्त हुई और 10,000 सालों में इन कार्य में जुड़ने के पश्चात भी महाराज ययाति का क्या निर्णय था कि मैं इन इंद्रियों को कभी भी भौतिक कार्यों द्वारा तृप्त या संतुष्ट नहीं कर सकता। तो कथा लंबी है, मैंने तो संक्षेप में कहा है। तो इस कथा का उद्देश्य क्या है कि हम बज्जी जो प्रयास कर रहे हैं भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति के कार्य में जुड़कर संतुष्टता प्राप्त करने के लिए, उनको ये संदेश देना कि भाई 40, 50, 60, 70, 80 साल छोड़ो, 10,000 सालों तक भी अगर आपको ये सुविधा प्राप्त हो जाए, आप भौतिक जगत में कभी भी असली संतुष्टता प्राप्त नहीं कर सकोगे। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, भक्ति योग के माध्यम के द्वारा भगवान के शरणागत होना चाहिए। तो आगे इस प्रवचन में प्रभुपाद जी रूप गोस्वामी जी के इस श्लोक का उपदेश उपयोग करते हैं, जहाँ की रूप गोस्वामी के अधो श्रद्धा तथा साधु भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी जी समझा रहे हैं कि किस प्रकार व्यक्ति भगवान के शरणागत होता है। सबसे पहले हमारे हृदय में ये भावना होनी चाहिए, अधो श्रद्धा तथा साधु, हमारे हृदय में ये भावना होनी चाहिए कि हम भगवान के शरणागत होना चाहते हैं। और अगर आपके मन में ईश्वर विचार रहेगा तो भगवान क्या करेंगे, आपको या किसी भक्त भगवत की संगत देंगे या ग्रंथ भगवत। ये जो आज का श्लोक है, इस श्लोक के अनुसार और प्रभुपाद जी इस श्लोक की व्याख्या करते हैं, इस विषय की व्याख्या करते हैं तात्पर्य में कि दो प्रकार के भगवत होते हैं, एक है भक्त भगवत और दूसरा है ग्रंथ भगवत। तो ग्रंथ भागवत पर भी बहुत महत्व दिया गया है हमारे शास्त्रों में, जैसे कि हम सब का अभ्यास है सारे विश्व में कि इस ग्रंथ भागवत के वितरण के माध्यम से आज लाखों लोग जुड़े हैं हरि नाम मंत्र के साथ। कैसे उनका परिचय हुआ, ग्रंथ भागवत के साथ। किसी ने उन्हें सड़क में ग्रंथ भागवत दिया, किसी ने उन्हें एयरपोर्ट में ग्रंथ भागवत दिया। आप लोग भारत में जैसे कई बार बल्क डिस्ट्रीब्यूशन करते हो तो लोग ग्रंथ भागवत को पढ़ते हैं। ग्रंथ भागवत में क्या उपदेश मिलता है कि हरि नाम स्वीकार करो, भौतिक कार्य को त्यागो, माया के प्रभाव से निकलो, कृष्ण सूर्य सम माया हाय अंधिकार, यहां कृष्ण ताहिनी माया अधिकार, ये संदेश आपको मिलता है कि जहां कृष्णा है वहां माया का प्रभाव नहीं होगा। तो इस श्लोक में भक्त भागवत और ग्रंथ भागवत दोनों की सेवा पर बल दिया गया है। और हम ग्रंथ भागवत की सेवा कैसे करते हैं, ग्रंथ भागवत को पढ़कर, ग्रंथ भागवत को बांटकर। जैसे कई बार प्रभुपाद जी ने कहा, अगर केवल तुम इन ग्रंथों को बांटोगे और पढ़ोगे नहीं और कोई आपसे पूछेगा इन ग्रंथों में क्या संदेश, अब क्या बोलोगे। तो प्रभुपाद जी ने इस विषय पर बल दिया था कि हमें इन ग्रंथों को पढ़ना भी है और बांटना भी है। तो हम सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं और बांटते भी हैं। और जो व्यक्ति ध्यान से भागवतम को पढ़ते हैं तो ये हमारा अभ्यास है और भक्ति के मार्ग में भी आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम कह रहे थे कि हमें रोज भागवत का क्लास होना चाहिए, तो आप ऐसे कई भक्त हो जो रोज मंदिर नहीं आ सकते, आपका घर मंदिर से दूर है या किसी शहर में जब मंदिर नहीं है आपको नौकरी में जाना है दफ्तर जाना है, तो आप वही लाभ उठा सकते हो अगर आप घर में बैठकर भी ये नियम बनाओ कि हमने रोज आधा घंटा एक घंटा सवा घंटा भागवतम को पढ़ना है। और अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, जैसे ध्यान से जैसे आपने परीक्षा की तैयारी करनी हो तो आप किताबों को ध्यान से पढ़ते हो, है कि नहीं, सोते सोते पढ़ोगे कुछ समझ नहीं आएगा तो इम्तिहान में फेल हो जाओगे, तो आप सुबह उठते हो 5 बजे कागज पेंसिल से नोट्स बनाते हो, नोट्स पढ़ते हो, ध्यान से पढ़ते हो, है कि नहीं, अगर आपने एग्जाम में बैठना हो तो। जैसे आप बड़े ध्यान से अपनी भौतिक पढ़ाइयों को करते हो उसी प्रकार ध्यान से हमें भागवत और गीता भी पढ़नी चाहिए, और ध्यान से पढ़ोगे तो अवश्य ही उसका प्रभाव पड़ेगा। तो जब हमारे हृदय में श्रद्धा हो कि हम भगवान के शरणागत होना चाहते हैं, अदो श्रद्धा तथा साधु, फिर आपको किसी साधु से परिचय होगा या आपको भक्त ग्रंथ भागवत से परिचय होगा, और फिर उस परिचय ग्रंथ भागवत को जब आप पढ़ते हो, पढ़ने से क्या आपको ज्ञान मिलेगा, ज्ञान मिलेगा क्या किस प्रकार आपको हरि नाम का जाप करना चाहिए, माया के कार्य से बचना चाहिए, और जब आप उसका पालन करते हो तो उसको कहा जाता है भजन क्रिया, और जब आप भजन क्रिया का पालन करते हो तो उसका क्या लाभ होता है, अनर्थ निवृत्ति। जो अनर्थ हैं जिनकी आवश्यकता नहीं है, जैसे आप बीमारी को दूर कैसे करते हो दवाई लेकर, तो उसी प्रकार अनर्थ का प्रभाव अगर आप घटाना चाहते हो तो भजन क्रिया एक उपाय है, और अगर आप करते जाओ भजन क्रिया फिर आपको निष्ठा प्राप्त होगी। कई बार भक्त पूछते हैं कि निष्ठा प्राप्त कैसे होगी, हम निष्ठा की स्थिति में कैसे पहुंचे, निष्ठा की स्थिति में आप पहुंचना चाहते हो तो आपको बड़े ध्यान पूर्वक होकर हम जाप करना है, भजन क्रिया का पालन करना है, और अंत में क्या प्राप्त होगा, कृष्ण प्रेम, और इसका माध्यम क्या है, भजन क्रिया। हरिदास ठाकुर 300,000 बार रोज जाप करते थे, उन्हें पता था कि चैतन्य महाप्रभु जी अप्रकट होने वाले हैं, तो उन्होंने निर्णय कर लिया था मैंने उनसे पहले अप्रकट होना है क्योंकि मैं देखना नहीं चाहता वो स्थिति जबकि मुझे यहां जीना पड़े महाप्रभु जी की संगत के बिना। तो महाप्रभु जी ने उन्हें कहा, हाई रात तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तुम बेशक जप घटा दो। उन्होंने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा नहीं मैं जप घटा नहीं सकता। तो हमें भजन क्रिया का पालन करना है बिल्कुल अंत तक, ये नहीं कि हम सोचे कि अभी हम ऐसी परमहंस की स्थिति में पहुंच गए हैं और हमें इसका पालन करने की आवश्यकता नहीं। आगे इस प्रवचन में प्रभुपाद जी रूप गोस्वामी जी के एक और प्रसिद्ध श्लोक है जिससे आप सब परिचित हो, उसका वर्णन करते हैं। श्रुति स्मृति प्राण आदि पंचरात्र का विधि बिना एकांत की हरि भक्ति रत्पात एवं कल्पत है। ये श्लोक कहाँ प्राप्त होता है, भक्ति रसमृत सिंधु में। तो रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जो धर्म श्रुति और स्मृति, तो प्रभुपाद जी इस प्रवचन में समझा रहे हैं कि श्रुति का अर्थ है वैदिक साहित्य, उसे हम श्रुति मानते हैं, और स्मृति उसे कहते हैं जो ग्रंथ या उपदेश उस वैदिक साहित्य को सहयोग दे रहा है। और प्रभुपाद जी गीता का उदाहरण देते हैं, गीता को स्मृति माना जाएगा, श्रुति है वैदिक शास्त्र और भागवत का उपदेश है स्मृति। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, तो रूपक गोस्वामी जी कहते हैं कि जो धर्म श्रुति और स्मृति पर निर्भर नहीं हो और अगर आप उसका पालन करो तो आपको कुछ लाभ नहीं मिलेगा, उल्टा इट विल क्रिएट कंफ्यूजन। तो वो कहते हैं धर्म निर्भर होना चाहिए किस पर, श्रुति पर और स्मृति पर। तो ये है हमारा सिद्धांत भी, हम धर्म का मतलब क्या है, धर्मां तु साक्षात भगवत पंडितम, धर्म का अर्थ है भगवान की वाणी। तो इसी विषय के आगे चर्चा कर रहे हैं प्रभुपाद जी, और प्रभुपाद जी ने समझाया कि गीता भी स्मृति है, गीता के साथ जो 18 पुराण हैं वो भी स्मृति माने जाते हैं, क्योंकि उनका भी मूल संदेश क्या है, वही संदेश जो कि है श्रीमद् वैदिक साहित्य का। तो इस विषय की प्रभुपाद जी आगे चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार श्रवणम के माध्यम के बिना भक्ति के मार्ग में आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए जब नवदा भक्ति का उपदेश दिया था नारद मुनि ने प्रहलाद महाराज को, और प्रहलाद महाराज जी ने उपदेश दिया था अपने पिता को, तो नवदा प्रकार की भक्ति में सबसे पहले किस विषय का वर्णन है? श्रवणम। श्रवणम द्वारा आपका आध्यात्मिक जीवन आरंभ होता है। इसलिए हमें चाहे हम ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ हो या सन्यासी हो, हमें ध्यान पूर्वक होकर हरि नाम को सुनना चाहिए, ध्यान पूर्वक होकर भागवतम को भी सुनना चाहिए, और रोज सुनना चाहिए भागवतम को भी। प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि हर भक्त जो मंदिर में रहता है उसे बिना नागे रोज आना चाहिए भागवतम के क्लास में। तो इसी विषय का प्रभुपाद जी वर्णन करें, और आगे प्रभुपाद जी कहते हैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचित गौर भक्तवृंद। तो हमें परम चैतन्य महाप्रभु जी उनके साथी जो कि पंच तत्व के रूप में प्रकट हुए थे उनके शरणागत होना चाहिए। और प्रभुपाद जी ने रूपा गोस्वामी जी का उस श्लोक का उपयोग किया है, नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्ण कृष्ण चैतन्य नाम गौरतम। आप जो हो अत्यंत दया दयालो हो। हम लोग ने ये भजन गाया था श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। तो इस भजन में नरोत्तम दास ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं आप जो हो अत्यंत दया दयालो हो, और आप प्रकट हुए हो किस लिए? पतितों का उद्धार करने के लिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी को सब अवतारों में सबसे प्रसिद्ध दया दयालु अवतार माना जाता है, और चैतन्य महाप्रभु जी प्रकट हुए किस रूप में? भक्त रूप में। इसलिए श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि चैतन्य महाप्रभु जी के प्रकट होने को छन्ना अवतार बुलाया गया है। सातवें स्कंद में प्रहलाद महाराज जी कहते हैं आप तो छन्ना अवतार हो। छन्ना अवतार मतलब कि आप छुपे हुए अवतार हो, आप हो भगवान पर आप प्रकट हुए हो किस रूप में? आप प्रकट हुए हो भक्त के रूप में। और चैतन्य महाप्रभु जी प्रकट हुए थे किस लिए? पतितों का उद्धार करने के लिए, खास करके दिल्ली शहर के पतितों का। चैतन्य महाप्रभु अवतारित हुए सब पतितों का अवतार उद्धार करने के लिए। चैतन्य महाप्रभु जी की भविष्यवाणी थी क्या? पृथ्वी पे आचे जाता नगर आदि ग्राम। कुछ दिन पहले हम भक्तों ने ठाकुर भक्तिनोद जी का तीर्थभाव तिथि मनाया था। तो ठाकुर भक्तिनोद जी जब प्रकट हुए थे उनकी एक भविष्यवाणी थी कि जल्द एक सेनापति प्रकट होगा जो कि सारे विश्व में हरि नाम को पहुंचाएगा, और एक दिन आएगा जबकि सारे विश्व के लोग, उन्होंने अलग अलग देशों का नाम भी लिया कि प्रतिनिधि मायापुर धाम में आएंगे और बंगाली भक्तों के साथ मिलकर ढोलक और मृदंगा से नाचेंगे गाएंगे और हरि नाम का प्रचार करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु जी की भविष्यवाणी थी क्या कि यह हरि नाम जो है एक दिन विश्व के हर कोने में पहुंचेगा। तो आगे प्रभु जी कहते हैं कृष्ण और माया दोनों साइड साइड में हैं। अगर आप कृष्ण को भूल जाओ तो माया में जैसे अंधेरा और रोशनी, आप अगर रोशनी में रहोगे तो हर चीज ठीक दिखेगी, और अंधेरेपन में रहोगे तो कुछ ठीक नहीं दिखेगा। तो अज्ञानता की स्थिति की तुलना की जाती है अंधेरेपन के साथ, और आध्यात्मिक ज्ञान की स्थिति की तुलना की जाती है किसके साथ? रोशनी के साथ। इसलिए कृष्णदास काव्यराज जी क्या कहते हैं, कृष्ण सूर्य समा माया हाया अंधिकार यहाँ कृष्ण ताहिनी माया अधिकार। यहाँ कृष्ण है वहां माया का प्रभाव नहीं। तो हमें हमेशा कृष्ण भक्ति में रहना चाहिए, और अगर कृष्ण भक्ति में रहोगे तो किसके प्रभाव से बचकर रहोगे? आत्मा। और कृष्ण भक्ति कृष्ण के प्रभाव में कैसे रहोगे हमेशा, सदा हरि नाम का जाप करो। केवल 16 माला आपका मिनिमम कोटा है, मैक्सिमम नहीं। 16 माला जाप कम से कम आप भक्तों को सावधानी से करना चाहिए, और बाकी समय बेशक लापरवाही से करोगे, दूसरे कामों को करते हुए करो, पर करते जाओ। अगर वैसी स्थिति में जहां हरि नाम का जाप नहीं कर सकते तो आप मन में कर सकते हो। मान लो आप दफ्तर में हो या नौकरी कर रहे हो, तो उस स्थिति में आप विष्णु स्मरण का लाभ उठा सकते हो, और जब आप कर सकते हो तो जब जाप करो। तो इस प्रकार सदा हरि का नाम जाप करोगे तो माया का आपके हृदय में, आपके मन में कोई प्रभाव नहीं रहेगा। तीसरे अध्याय भगवद गीता में अर्जुन ने पूछा था कि जानते हुए भी व्यक्ति गलत काम कैसे करता है, और भगवान ने कहा काम ऐसे क्रोध ऐसे राजगुण समुद्र बहा। आगे भगवान ने कहा ये कामा का निवास का स्थान कहाँ है, मन में, बुद्धि में और इंद्रियों में। फिर आगे भगवान ने कहा ज्ञान के तलवार से इसको नष्ट करो। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमें भागवत को सुनना चाहिए, ग्रंथ भागवत की का अध्ययन करना चाहिए, भक्त भागवत की सेवा करनी चाहिए। और अगर आप इन तीनों चीजों को करोगे, क्या भागवत को सुनना, हरि नाम को ध्यान से सुनना, भक्त भागवत की सेवा करना और ग्रंथ भागवत का अध्ययन करना और वितरण करना, तो फिर बिना शंका के आप भगवान के शरणागत हो सकोगे और जो माया का प्रभाव है वो घटते जाएगा। कई बार आप देखते हो हम पुराने भक्त 10-20-30 साल पुराने परमान में भौतिक आकर्षण रहता है, तो कई बार हम सोचते हैं शायद हरि नाम में कुछ कमी है, हमें और मंत्रों की आवश्यकता है या किसी इस्कॉन संस्था में कमी है। कमी हमारे में है, हरि नाम में नहीं, ग्रंथों के प्रभाव में नहीं। हम ठीक रूप से हरि नाम का जाप नहीं कर रहे, ध्यान पूर्वक होकर जाप नहीं कर रहे, ध्यान पूर्वक होकर संदेश नहीं सुन रहे, इसलिए माया का प्रभाव रहता है। तो ये श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, आप सब भक्तों को इसको ध्यान से पढ़ना चाहिए। हरे कृष्णा। तो आज राकेश और पंडित का तीर्थभाव दिवस भी मुझे जाना है, देर हो गई। हम राकेश और पंडित ये कौन थे, चैतन्य महाप्रभु जी के साथी। और राकेश और पंडित ने एक समय 72 आवर्स के लिए एक साथ नाच किया था, नाचे थे। और चैतन्य महाप्रभु एक साथ 72 आवर्स के लिए क्या कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे नॉन स्टॉप। आप लोग एक दो घंटा करते हो थक जाते हो, फिर ब्रकेश पंडित 72 आवर्स के नॉन स्टॉप नाच रहे थे। किसके घर में, श्रीवास पंडित के घर में। तो चैतन्य चतुर्मित में कहा गया है कि बहुत खूबसूरत गायक भी थे और नाचते थे कीर्तन में। और रथ यात्रा के समय चैतन्य महाप्रभु जी उन्हें अलग अलग कीर्तन पार्टी थी, तो एक कीर्तन पार्टी का उनको लीडर भी बनाया था। तो आज उनका तिरुभाव तिथि है, और कहा गया है कि ध्यानचंद एक वो गोपाल गुरु गोस्वामी के शिष्य थे, कि वक्रेश्वर पंडित कौन थे, तुंगा विद्या सखी के अवतार माने जाते हैं, क्योंकि तुंगा विद्या सखी भी बड़े सुंदर रूप से गाती है और नाचती है। तो आज उनका तिरुभाव तिथि है। और वृंदावन दास ठाकुर ने कहा है कि चैतन्य महाप्रभु जी कलयुग में प्रकट हुए थे पतितों का अवतार करने के लिए। वो प्रकट हुए थे मृदंग और करताल के साथ, और राकेश पंडित जो है उनका सहयोग दे रहे थे इस संकीर्तन आंदोलन को सफल बनाने में। तो आज हमें उनके चरण कमलों में प्रणाम करते हुए उनकी कृपा की भीख मांगनी चाहिए कि हमारे में भी उतना उत्साह हो कि हम 70 घंटे से भी लगातार कीर्तन कर सकें और नाच सकें। राकेश पंडित के। तो आज ये एक और शुभ दिन है, कहा हाँ, आज हीरा पंचमी भी है। तो ये रथ यात्रा के पांचवें दिन में ये उत्सव मनाया जाता है। ये जो रथ यात्रा उत्सव हम मनाते हैं, आपको पता है सबसे पहली बार कब हुआ था? ये उत्सव है हमारे शास्त्रों के अनुसार 1,34,00,000 साल पुराना। 1,34,00,000 साल पहले सबसे पहली रथ यात्रा बीती थी। तो कुछ दिन पहले आप सब जानते हो रथ यात्रा हुई थी आपके दिल्ली में, तो शायद नवंबर में होती है, पर इस्कॉन के कई मंदिरों में इस दिन रथ यात्रा हुई थी 16 तारीख को। मीरा रोड, भुवनेश्वर, कलकत्ता, हैदराबाद, सूरत, कम से कम 15 शहरों में। तो रथ यात्रा उत्सव के 5-6 दिन में ये उत्सव मनाया जाता है। मैं जब 2 मिनट के लिए चैतन्य चतुर्मिता से पढ़कर सुनाता हूँ आपको इंग्लिश में। हाँ, knowing that the Hira Panchami festival was drawing near, King Pratapudra attentively talked with Kashi Mishra. Maharaj Pratapudra ke vishay mein aap jante ho, wo Orissa ke raja the aur Chaitanya Mahaprabhu ke bahut uche koti ke bhakt bhi the. Jo rath yatra se nikalne se pehle pure raste ko saaf karte the sone ke jhadu ke sath aur fir dhote the gulab ke pani ke sath. Tomorrow will be the function of Hira Panchami, Lakshmi Vijay, holding this festival in a big way that has never been held before. So Kashi Mishra se keh rahe hain, kal Hira Panchami ka utsav hai, to hame bahut hi utsah ke saath iski taiyari karni chahiye. So ye Hira Panchami festival jo hai, Rath Yatra ke 5th din mein manaya jata hai. To aaj Rath Yatra ka 5th din hai. Aur Bhagwan Jagannath ji apni patni ko chhodkar चले गए थे वृंदावन, तो लक्ष्मी जी की इच्छा होती है कि मैं आऊं जगन्नाथ जी को मिलने के लिए, अपने पति को मिलने के लिए। तो ये हीरा पंचमी वाले दिन लक्ष्मी जी आती हैं कहां? भगवान को गुंडीचा मंदिर में मिलने के लिए। तो आज वो शुभ दिन है। और जपरा महाराज पदपुदा ने कहा था कि बड़े उत्साह के साथ इसकी तैयारी करो और रथ यात्रा से भी ज्यादा प्रसाद तैयार करो, इतना अच्छा बड़ा उत्सव करो कि चैतन्य महाप्रभु जी भी प्रभावित हो और खुश हो इस उत्सव को देखकर। तो आज यह पंचमी उत्सव है, हम इस घर में तो इतना शायद नहीं मनाते हैं, पर यह पंचमी उत्सव की हरे कृष्ण। ओके, मुझे कोई जाना है। हाँ हाँ, एक क्वेश्चन पूछो।
जैसे कभी कभी क्लास में भी जैसे जप करते हैं, क्लास सुनते वक्त भी, या कभी आरती चल रही है तो पीछे जप हो रहा है या बाहर जप हो रहा है, कि ये ठीक है उस वक्त तक जप करना?
जब क्लास में बैठे हो तो उस वक्त जप नहीं करना चाहिए, पर अगर आरती हो रही है और आप पीछे खड़े होके जप कर रहे हो, अगर क्लास हो रही है और आप जप कर रहे हो तो आप क्लास का लाभ नहीं उठा सकोगे, फिर आपका ध्यान ना क्लास पर रहेगा पूरा ना जप के ऊपर। पर अगर आप आरती में, मतलब मंगल आरती में तो सबको ध्यान पूर्वक होना चाहिए, पर अगर आप समझो दूसरी आरती में अपना जप समाप्त कर रहे हो और पीछे खड़े हो तो उसमें तो
गुरु महाराज आपने जैसे बताया कि जो रजोगुणी व्यक्ति है वो बहुत कार्य करता है, रजोगुणी व्यक्ति बहुत कार्य करता है, तो जैसे हम मंदिर में भी देखते हैं कि कई भक्त जो है वो सुबह से शाम तक कार्य करते हैं, क्लास में भी नहीं आते और वो गुरु पूजा में भी नहीं आएंगे और भी कई प्रोग्राम्स में नहीं आएंगे, तो क्या ये रजोगुण है या इसको कैसे समझा जाए?
रजोगुण थोड़ा सतोगुण, बस शुद्ध साधवा नहीं है। अगर आप भक्ति के मार्ग में परिवर्तन करना चाहते हो तो भजन क्रिया की बहुत आवश्यकता है, चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लो, बट दैट इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर मॉर्निंग साधना। हरे कृष्णा।
ला वक्रेश्वर पंडित प्रभाव तिथि महामहोत्सव की, श्री हेरा पंचमी महामहोत्सव की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की।